हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अक्षत ने सोनल परी से कहा, मैं आपसे एक तरफा प्यार कर बैठा हूँ। सोनल परी का चेहरा सुनते ही लाल हो गया। वो खुद अक्षत से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उसके इजहारे मोहब्बत ने उसके पेट में तितलियाँ उड़ा दी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षत उसे इतना प्यार करता है। सोनल परी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अक्षत जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का था। उसने झट से सोनल परी का हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया। फिर उसने अपने होंठ उसके होठों के बेहद करीब ले जाकर कहा, मुझसे दूर जाने की मत सोचना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और अक्षत खुराना अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो मरते मरते जाएगा, लेकिन अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से नहीं जाने देगा। आप मेरी जिंदगी में आई पहली लड़की हैं। आज तक कितनी ही लड़कियों ने मुझे रिझाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी आप जैसी नहीं थी। मैंने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, लेकिन आपको देखकर मेरा दिल करता है कि बस आपको ही देखता रहूं, आपकी खुशबू में खोया रहूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, शायद मुझ पर आपकी खूबसूरती का जादू चल गया है। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं, और इसीलिए आप अमन के यहाँ कोई काम नहीं करेंगी। अब आप आज के लिए जा सकती हैं। जाकर उसे मना कर दीजिए कि कल से आप कोई काम नहीं करेंगी। इतना कहकर उसने सोनल परी का हाथ छोड़ा और अपने होठों को उसके होठों से हल्का सा पीछे कर लिया। सोनल परी उस वक्त उसकी सांसों में पूरी तरह मदहोश हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो अक्षत अभी उसे किस करने वाला है, लेकिन अक्षत ने खुद को रोका और सोनल परी को जाने दिया। अक्षत ने जैसे ही सोनल परी का हाथ छोड़ा, उसने राहत की सांस ली। सोनल परी वहां से भागने लगी और अक्षत उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। वहीं तारा परी सोनल परी का बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। उसे जल्द से जल्द सभी परिवार वालों को सोनल परी से मिलवाना था और उसे इस बंगले में रहने की व्यवस्था करनी थी। यही सोचते हुए तारा परी मन ही मन सोनल परी से बात करने लगी थी, लेकिन सोनल परी उस वक्त अक्षत की बातों में पूरी तरह गुम थी, इसीलिए उसे तारा परी से बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। अपनी उधेड़बुन का शिकार होकर सोनल परी जल्दी ही अमन के घर के सामने पहुंच चुकी थी। खुद को संभालते हुए जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा तारा परी उसका इंतजार कर रही थी, शायद उससे नाराज भी थी। सोनल परी को देखकर तारा परी झट से बोली, आखिरकार कहाँ रह गई थी तुम? ये क्या तरीका हुआ? इतना टाइम कौन लगाता है? तुम तो अपनी जादू से एक मिनट में भी आ सकती थी, तो फिर इतना टाइम क्यों लगाया आने में? तब सोनल परी थोड़ी हैरान होते हुए बोली, मैं कहीं फंस गई थी। तुम बताओ क्या हुआ है, क्या करना है? तारा परी ने सोनल परी की ओर देखते हुए कहा, तू अच्छी तरह से जानती है कि घर में अब काली शक्तियों का मालिक अमित रहने आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है वो कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर चलाएगा जिससे वो बदसूरत मलिका भू यहाँ आएगी, तो हमें दोनों को सचेत रहना होगा और कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे काली शक्तियों का मालिक अमित अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए और उसकी असलियत, उसका खौफनाक चेहरा अमन के सामने और साथ ही अमरेंद्र जी के सामने आ जाए, क्योंकि पिताजी उसे दिल से चाहने लगे हैं। मैंने पिताजी की आंखों में काली शक्तियों के मालिक के लिए काफ़ी इमोशंस देखे हैं, और अगर वो इसी तरह इमोशनल रहे और अमरेंद्र जी के सामने अमित के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो उल्टा वो हम पर ही गुस्सा करेंगे, इसीलिए हमें जो कुछ भी करना होगा सोच समझकर ही करना होगा। अभी तारा परी सोनल परी से बात ही रही थी कि तभी करिश्मा जी वहां आ गईं। करिश्मा जी सोनल को देखकर हैरान हो गईं और कहने लगीं, क्या हुआ तारा बेटी, ये कौन है? तारा परी करिश्मा जी की ओर देखकर कहने लगीं, वो मॉम, ये मेरी जानने वाली है और मेरी शादी में मदद करने के लिए मैंने इसे अपने पास काम पर रखने के लिए बुलाया है, तो क्या मैं इसको यहाँ रख सकती हूँ? ये गेस्ट रूम में रह लेगी। जैसे ही तारा परी ने सोनल परी को वेडिंग प्लानर बताते हुए इंट्रोड्यूस किया, करिश्मा जी थोड़ी हैरान हुई और कहने लगी, लेकिन बेटी ये तो बहुत खूबसूरत है, कहीं ये भी कोई परी तो नहीं? जैसे ही करिश्मा जी ने अपना अंदेशा जाहिर किया, तारा हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, ये परी ही है और ये मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए आई है। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, करिश्मा जी बहुत खुश हो गईं और कहने लगीं, तुम जानती हो नॉर्मल इंसान परियों को देखने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या मेहनत करते हैं, और मुझे देखो, मैंने कोई कड़ा तप भी नहीं किया और मुझे देखो, दो दो परी देखने को मिल रही हैं। इतना कहकर उन्होंने सोनल परी के माथे को चूमा और कहने लगी, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। करिश्मा जी बहुत खुश थीं। तारा परी ने भी करिश्मा जी का प्यार देखकर उन्हें गले लगा लिया और कहने लगी, मॉम आप सबसे ज़्यादा अच्छी हैं,
आप सोच भी नहीं सकती कि आप कितनी अच्छी हैं। आपके जैसा इंसान रूप में या जिन रूप में कोई नहीं है। इतना कहकर उसने करिश्मा जी के हाथों को चूमा और उन्हें गले लगा लिया। दोनों परी बहुत खुश थीं। तीनों आपस में बातें ही रही थीं कि तभी अमन वहां आ गया। अमन ने जैसे ही तारा के साथ एक लड़की को देखा वो हैरान हो गया और कहने लगा, क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पर और ये कौन है? करिश्मा जी हल्के से अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अब क्या बताऊं, तुम्हारे पिता ने तो हमें ऑर्डर दे दिया है कि उनके बेटे की शादी यहाँ होगी, इसीलिए मैंने इस वेडिंग प्लानर को बुलाया है, ये हमारी शादी के इंतजाम में मदद करेगी। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, अमन मुस्कुराकर अपनी माँ के गले लग गया और कहने लगा, मॉम मुझे इस बात की खुशी है कि आपने बेमन से ही सही लेकिन इस बात को अपना लिया है कि हमें अमित के यहाँ शादी करनी है। मैं आपके इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे भी मॉम सिर्फ 6-7 दिन की ही तो बात है, उसके बाद मैं खुद अमित को यहाँ से जाने के लिए कह दूंगा, आप परेशान मत होइए। और हाँ, मैंने अमित से बात कर ली है, आज शाम को ही वो अपनी होने वाली बीवी और साथ ही ऑफिस के 2-3 खास कलीग को लेकर यहाँ आ रहा है। मैंने उनके रहने के लिए नीचे वाले फ्लोर के सारे गेस्ट रूम साफ करवा दिए हैं, एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। वो तारा की ओर देखकर कहने लगा, तारा आप आइए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। वो तारा को अपने साथ कमरे में ले जाने लगा। तारा जाना नहीं चाहती थी लेकिन उसने सोनल परी की ओर देखा। सोनल परी की आंखों में शरारत थी। तारा परी उसे डांटना चाहती थी लेकिन वो उस वक्त अमन के साथ थी, इसीलिए कुछ नहीं कहना चाहती थी। इसीलिए करिश्मा जी सोनल परी को लेकर उसे कमरा दिखाने चली गई। अमन तारा को लेकर उसके कमरे में आ गया। कमरे में आते ही अमन ने तारा के चेहरे को पकड़कर बुरी तरह से कभी उसके गालों पर, कभी जुल्फों पर, कभी माथे पर और फिर उसके होंठों पर किस करना शुरू कर दिया। तारा पूरी तरह हैरान हो गई। वो अमन के इस तरह के एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी लेकिन अमन ऐसा लग रहा था मानो जन्मों का प्यासा हो। तारा के होठों को देर तक चूमने के बाद उसने उसे सांस लेने का मौका दिया। तब तारा ने 2-3 धक्के अमन के सीने पर मारते हुए कहा, ये क्या कर रहे थे आप? आप जानते हैं मुझे सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही थी और आप मुझे कमरे में क्यों ले आए? क्या इसी काम के लिए आप मुझे कमरे में ले आए हैं? हाँ, आप जानते हैं अमन, शादी वाला घर है, कितने सारे काम करने हैं।
तारा ने बिल्कुल इंसानी बीवी की तरह कहा। अमन उसकी बातें सुनकर जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी को कितने सारे काम करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बीवी दुनिया के सारे काम करने के चक्कर में अपने पति का ध्यान रखना ही भूल जाए। इतना कहकर थोड़ा आगे बढ़कर उसने एक बार फिर उसके होठों को छू लिया। तारा अमन के प्यार पर अंदर ही अंदर शर्मा गई, क्योंकि अमन बहुत ज्यादा पजेसिव होता जा रहा था, जो तारा के लिए ठीक नहीं था। तारा ने अमन से कहा, मुझे लगता है कि आपको अपने जिन्नों पर भी ध्यान देना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली बार जिन्नों पर ध्यान नहीं देने की वजह से मुझे आपसे इतने दिन दूर होना पड़ा था और आपने उन 3 जिन्नों और जादुई बावर्ची को उसके किए के मुताबिक सजा दी थी। लेकिन मुझे लगता है भले ही आपने जिन्नों को आगाह कर दिया है कि कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप एक जिन महाराज हैं, आपको पर्सनली सभी जिन्नों पर नजर रखनी चाहिए। तारा की बात सुनकर अमन का चेहरा सख्त हो गया। वो उसकी ओर देखकर कहने लगा, वैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे कब और क्या करना चाहिए। वैसे भी मैं एक जिन महाराज हूँ और जिन महाराज को कब क्या करना चाहिए वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। और शायद आप भूल रही हैं मिसेज अमन सिंह राठौर, आप एक मामूली इंसान हैं। एक मामूली इंसान एक जिन महाराज को नहीं बता सकता है कि उसे कब क्या करना है क्या नहीं, और आपकी सोच सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है जबकि मेरी सोच जिन्नों से भी कहीं ज्यादा है। तारा अमन की बातें सुनकर हैरान और दुखी हुई। अमन की बातों में जिन महाराज होने का घमंड साफ दिखाई दे रहा था, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं था। तारा ने उस वक्त अमन को कुछ नहीं कहा और हल्की सी आवाज में बोली, आप शायद भूल रहे हैं, भले ही मैं एक मामूली इंसान हूँ लेकिन मेरे अंदर एक जिन का वंशज पल रहा है जो मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर बनाता है, तो आप ये मुझे बार बार मामूली इंसान कहना बंद कीजिए। तारा की बात सुनकर अमन अगले ही पल मुस्कुरा उठा और कहने लगा, बिल्कुल, मैं तुम्हें आज के बाद मामूली इंसान नहीं कहूंगा। वैसे भी तुम एक जिन महाराज की बीवी हो तो तुम तो मामूली हो ही नहीं सकती हो, तुम तो अपने आप में ही खास हो। इतना कहकर अमन ने एक बार फिर अपनी तारीफ कर दी। तारा थोड़ी हैरान थी लेकिन वो इस बात को अपने दिल में नहीं बिठाना चाहती थी। तभी अचानक अमन थोड़ा आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और एक बार फिर उसके होंठ तारा की गर्दन से होते हुए उसके कंधों पर घूमने लगे। तारा की आंखें अपने आप बंद होती चली गईं, क्योंकि अमन के प्यार के आगे वो खुद को पूरी तरह सौंप देती थी और वो पूरी तरह मजबूर हो जाती थी। अमन तारा को किसी तरह का कोई विरोध नहीं करते देखकर उस पर हावी होने लगा और जल्दी ही उसने तारा के कपड़े उसके जिस्म से अलग करना शुरू कर दिया। हालांकि ये दिन की शुरुआत ही थी, अभी सिर्फ सुबह का ही समय था, लेकिन अमन और तारा एक बार फिर एक दूसरे के प्यार में डूबने के लिए तैयार थे।